एकादशी है,
कार्तिक एकादशी।
इसके बाद में उत्थान एकादशी आने वाली है। उत्थान एकादशी के बाद से बहुत से लोग व्रत समाप्त करते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा तक व्रत करते हैं। एकादशी में व्रत समाप्त होने पर भी पांच दिन भीष्म पर्व पड़ता है,
भीष्म पंच।
इसलिए की हलो बंद हो गया लोकन है।
द्वादशी से द्वादशी तक कुछ लोग व्रत करते हैं, कोई पूर्णिमा से पूर्णिमा, सभी पूर्णिमा तक जरूर सबको व्रत करना चाहिए। ये राधा जी का ये व्रत है। कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी, इसमें थोड़ा सा भी यदि कोई नियम पूर्वक कोई यह व्रत करता है तो राधा जी प्रसन्न हो जाने से कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते। अभी कीर्तन में एकादशी का इन लोगों ने गाया, यदि एकादशी व्रत न रहे और सब व्रत भी करें तो उसका कोई फल नहीं। सब व्रत मिल करके कोटि कोटि मिल करके भी एकादशी के एक थोड़े से अंश के बराबर शासन के बराबर भी इनका फल नहीं होगा। इसलिए ब्रजवासी लोग और हमारे जितने वैष्णव लोग हैं एकादशी व्रत जरूर करें, इसलिए इस महीने में जरूर करना चाहिए। यदि हो सके तो प्रतिदिन भागवत भी सुनना चाहिए, भगवान की लीला कथाएं सुननी चाहिए। अभी सभी लोग बाहर से आकर के कहां कहां से अमेरिका इंग्लैंड और बंगाल और बिहार कहां कहां से आकर के इस महीने में परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं, किंतु यहां के लोग बहुत कम करते हैं। वो देखते हैं कि खर्ची है। और विश्व के लोग कहां कहां से आते हैं, कितना कष्ट करके आते हैं, पैदल चलते हैं, परिक्रमा करते हैं। हम समझते हैं कि वो लोग इसकी महिमा अधिक जानते हैं। आप लोगों को तो देवी की तरफ में पूजा करेंगे, किंतु पूजा उनकी भी होनी चाहिए, उन्हीं की होनी चाहिए। आप लोग समझते हैं कि हम घर में हैं, क्या ब्रज में जाना है, इधर करना उधर करना, आप लोगों को फुर्सत नहीं है। और उन लोगों को सब छोड़ छाड़ करके यहाँ पर आए। ब्रज की महिमा हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं और ब्रजमंडल की परिक्रमा भी प्रति वर्ष करते हैं। आप लोगों ने एक बार हमने कर लिया था, तो एक बार आप लोगों ने खा लिया था, रोज रोज क्यों खाती हैं, रोज रोज क्यों पानी पीती हैं, खाती हैं? इसलिए कभी कभी समय मिले ब्रजमंडल की परिक्रमा भी इसमें करना जरूरी। क्यों? भागवत तो पुस्तक में लिखी है भागवत, और यदि परिक्रमा करेंगे अपने आप, गिरिराज में भागवत लिखा हुआ है, जमुना जी ने भागवत लिखा है, नंदगांव बरसाना ये सब स्थानों में भागवत अपने आप लिखा हुआ है, वो अपने आप जाने से ही लीला की स्फूर्ति हो जाए। हम लोग अभी गए थे सब 12 वनों में और कितने उपवनों में, वहाँ वहाँ की लीला स्थलियों का हम लोगों ने वर्णन किया। आज जो बाकी रह गया है वो सबका हम वर्णन करेंगे। देखो एक छोटी सा स्थान है अजनौ, अजनौ। अभी हम जहाँ गए थे उस दिन हमने छोड़ दिया था शेरगढ़ में, मैंने कहाँ छोड़ा था, कोसी में हम लोगों ने छोड़ दिया, कोसी से यहाँ चले आए। कोसी के बाद में अजनौ के एक स्थान पड़ता है। अजनौ को मैंने क्या, साधारण आदमी उस गांव का आदमी नहीं जानता है जो अजनौ क्या चीज है, किंतु कृष्ण लीला के नाम पर इसका नाम पड़ा है। आजन से अजनौ, अंजन, अंजन होता है ना, गाजन होता है, उसको अंजन कहते हैं। किसी दिन राधा और कृष्ण जी बैठे हैं और राधा जी के देखा जी खूब श्रृंगार में सब ठीक है, किंतु आंख में काजल मिल गया। तो कृष्ण ने मंगाया काजल, अंजन मंगाया और अपने हाथों से काजल करने लगे। काजल किया मैं, किंतु यहां तक बढ़ा करके यहां तक लेकर के चले काजल। राधा जी से कहते हैं देखो तू देखने लगी, कहीं तुमने ये क्या कर, तो उसने फिर से बिगाड़ करके और फिर से काटना भी, तो वो यहां तक चलाया, फिर उसको मिटाया, फिर करने लगे। बार बार मिटा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। राधा जी के हृदय में भी, उनके हृदय में भी कुछ सिहरन सी आई। ये सब लीलाएं वहां पर हुई जहां पर आयोजन किया, और बार बार पूछ रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, वो स्थान का नाम है छोटी छोटी बात है। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे तो सब ये सुनेंगे कैसे। इसलिए ब्रजमंड ये कार्तिक महीने में हम लोग घर बैठे नहीं रहते, ब्रजमंडल में स्थानों स्थानों में हम परिक्रमा करते हैं, और वहां पर लिखा हुआ आपने आप उन स्थानों में भागवत लिखा। अभी तीर्थघाट गए थे, वहां की कथाएं हमने सुनाई, और सब जगहों में गए थे। अभी हमने जहां जहां हम लोग गए थे उसमें थोड़ा सा स्थान बाकी रह गया, तो उसका अभी हम बतलाएंगे कि कौन कौन स्थान में हम नहीं गए, कौन कौन स्थान में गए, और उसका वर्णन हम संक्षेप में यहाँ पर भी बतलाएंगे। उसके पहले एक बात बतला देना चाहता हूँ कि हम लोगों की परिक्रमा करीब करीब हो चुकी है, किंतु अभी बेलबन नहीं गए और वृंदावन में नहीं गए, भाकरौल में नहीं गए, और भी कुछ स्थान में नहीं गए। अभी गोवर्धन में हम गए हैं, पूजा भी की है, परिक्रमा नहीं की है, तो उसकी हम परिक्रमा 16 तारीख को करेंगे, और उसी दिन वहीं पर अन्नकूट होगा। जो भी जाएगा वो हम लोगों के साथ में प्रसाद पाएगा, किंतु किराया भाड़ा देना पड़ेगा अपना। किराया हम नहीं देंगे, किराया आप लोगों को अपना देना पड़ेगा। तो जो जो जाना चाहते हैं हमारे साथ में, वहाँ के एक एक स्थान में हम जाएंगे, कहाँ पर बाजन शिला है, कहाँ पर वो गोपाल जी निकले, कहाँ पर वो गोविंद कुंड में क्या लीला हुई, दान घाटी में क्या लीला हुई, मानसी गंगा में क्या है, वहीं पर गोपी घाट है, उसमें गोपियों को जहाँ पर पार करते थे कृष्ण, इसके बाद में वो गौर कुंड है, संकर्षण कुंड है, वहाँ की सब लीलाएं हैं। वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे वहाँ नवल कुंड, कृष्ण जी का नवल कुंड है, अपरा कुंड है, पाटी में सुरभि कुंड है, सुरभि में गजराज कुंड है, ऐरावत कुंड है, और फिर गोवर्धन अन्नपुर का स्थान है। वहाँ से आगे बढ़ करके फिर गोवर्धन में आएंगे,
चकलेश्वर
महादेव में जाएंगे। क्यों नाम पड़ा चकलेश्वर, चकला देवी नहीं,
चकलेश्वर,
चकलेश्वर माने चक्रेश्वर से ब्रजवासी लोग चकलेश्वर करते हैं, है चक्रेश्वर, चक्रेश्वर से
रोटी लोग
उस स्थान के चक्र से रक्षा कर रहे हैं। उद्धव कुंड में जाएंगे, गोपियों से उनकी बातें हुई थी, वहाँ पर जाएंगे, और फिर वहाँ से राधा कुंड में कितने स्थान है, उनकी जीवा है वहाँ पर, उनका कूप है, वेणु कूप है, गोपी कूप है। महाप्रभु जी ने राधा कुंड को प्रकाश किया था, रूप गोस्वामी सर जी ने कहाँ भजन किया, रघुनाथ ने भजन किया था, और उसके बाद में कुंड कैसे प्रकट हुआ। राधा जी का कुंड का महिमा अधिक है कृष्ण के कुंड से, उसका पानी सफेद, उसका पानी काला, इस तरह से इन सब स्थानों कुसुम सरोवर में जाएंगे। तो जो जाना चाहता है तो पहले से हमको बतला देना, तो उसे भीड़ हो जाती है, हम लोग बस से जाएंगे यहाँ, और वहाँ से सवेरे में 6 बजे से हम परिक्रमा आरम्भ करेंगे। इसलिए हमको नाम लिखवा देना, जिससे कि हम एक बस तो हमारी जाती है उसमें हमारे ब्रह्मचारी ही भर जाते हैं, या 2-4 लोग उसमें आ सकते हैं। और ये सब जहाँ जहाँ हम लोग आज नहीं गए थे, कल नहीं गए थे, उन सब का स्थान और वहाँ की महिमा मैं बहुत संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। अब आप लोग जाना चाहें तो जा सकते बताया।
कृपा नया अपेक्षी
छाता से होकर के निकले, छाता माने छत्रबन, छत्रबन माने क्या, किसी समय में सुवर्ण सिद्धांत मधुमंगल इत्यादि सब कथाओं में मिल करके कृष्ण को छत्रबन में छत्र लगाया, कृष्ण को और सिंहासन पर बैठा दिया और बोले कि आप ब्रज के राजा हैं, ब्रजराज हैं या ब्रजनंदन हैं, आप ही ब्रज के मालिक हैं। कृष्ण ने कहा जैसे बात है तो मधुमंगल तुम जाओ, ऐलान कर दो, घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो, जो महाराजा छत्रपति नंदे रघुवार, महाराजा यहाँ के ब्रज के हैं, नंदनंदन यहाँ के महाराजा हैं, जाकर के कह दो। तो वो जाकर के सब कहने लगा। गोपियों ने सुना ये कहाँ का महाराजा आ गया, हम तो जानते थे कि ब्रज की महारानी श्रीमती राधिका जी। उन्होंने सुन करके, और एक गांव है उमराव, इसीलिए उनका उमराव नाम है। उमराव माने होता है राजा, बड़े बड़े धनी लोगों को उमराव कहते हैं। तो उन्होंने राधिका जी को सिंहासन पर बैठा करके और राजा उनको वृंदावनेश्वरी घोषित कर दी और कह दिया जी ये जो घोषणा कर रहा है उसको पकड़ लाओ। मधुमंगल को पकड़ लिया और उसको पुष्प से डोरी बनाई गई, उसमें रस्सी नहीं रही, केवल पुष्पों से पुष्पों की लड़ी बना करके उसको रस्सी बनाया और मधुमंगल को उसमें बांध दिया और पुष्प की छड़ी लेकर के दो चार छड़ी उनको लगा दिया नहीं। और वो आम आम काट करके रोना लगा, हमको छोड़ दो, कहे नहीं तुमको छोड़ेंगे नहीं, कहे मुझे भूख लगी है, हमको मत छोड़ो किंतु हमको लड्डू खिलाओ। अंत में उन लोगों ने हंस करके उसको ब्राह्मण का जो पेटू ब्राह्मण है इसको दे दो, उसको एक दो लड्डू दे दिया। वो बड़ा प्रसन्न होकर के लौट गया, कृष्ण के कहा, कृष्ण से लौट करके कहा भाई आज तो मेरी प्राण बच गई, इसी प्रकार से तुम राजा होने योग्य नहीं हो, तुम्हारे रहते हुए और हमको पकड़ लिया गोपियों ने और उनके चरणों में, राधा जी के चरणों में हमें गिरा दिया, तो तुमको लज्जा आनी चाहिए, हमको तो बड़ी लज्जा आई, तुमको भी अलग लज्जा आनी चाहिए। तो एक बात करो, तुमसे राजापन का काम नहीं होगा, तुम हमारे साथ में आओ और आ करके वो जो उमराव बनी है उसके चरणों में तुम नतमस्तक हो। तो कृष्ण को, कृष्ण ने देखा जी से जरा देखें तो कैसे उमराए बनी है, उनको देखने के लिए उनको उत्कंठा हुई और उनका हाथ पकड़ करके वहां पर आए। वहां पर उनका वो जो रूप देखा, कभी ऐसा रूप देखा नहीं, अपूर्व रूप देख करके और वहां पर पहुंचे। गोपियों ने जब उनके चरण में गिरने जा रहे थे तो गोपियों ने ललिता विशाखा जी ने उनको पकड़ करके और राधा जी के बाएं में उनको बैठा दिया। बैठा देने के बाद में दोनों का अपरूप हुआ उनको देख करके। उस दिन से राधा जी को उन्होंने उमराव स्वीकार किया और ये तुम्हारा ही राज्य ही ये स्वीकार किया, इसलिए उमराव गाँव है, वहीं से होकर के हमारी गाड़ी गई। उसी उमराव गाँव में एक किशोरी कुंड है, किशोरी कुंड माने राधा जी का स्थान है, तो किशोरी जी के नाम पर वो कुंड बना है जो रास्ते में पड़ता है, जिसको दाहिने तरफ में छोड़ करके गए। तो वो किशोरी कुंड के समीधि में हमारे लोकनाथ गोस्वामी जी भजन करते, भजन करते करते बहुत दिनों के बाद में वो खैरा नामक ग्राम में, यहाँ पर किशोरी कुंड में, उमराव गांव में, छत्रबन में और वृंदावन के और स्थानों में, खैरा में वो भजन करते थे। अब बड़े त्याग के रूप में बैराग रघुनाथ दासदार गोस्वामी जैसे परम भक्त किया बैराग। तो उनको वहां पर एक तालाब में सफाई हो रही थी, उसमें से एक मित्र राधा विनोद जी लोगों ने उनको बुला करके दिखाया। उन्होंने कहा ये यही हमारे आराध्य के हैं, सबसे पूजा करने लगे। अंत में जब वो श्लोक को छोड़ने लगे कृष्ण की अप्रकट लीला में जब प्रवेश करने लगे तो रात वहाँ गोकुलानंद जी का जहाँ मंदिर है, जहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का स्थान है भजन स्थली, वहीं पर वो उस स्थान वहाँ पर रख गए। उस समय रूप गोस्वामी इत्यादि ने वहीं पर रखवाया और वहीं पर विनोद बिहारी जी उनके से गोकुलानंद में अभी भी निकला है, किंतु वो अब चले गए हैं वहाँ जयपुर में। तो अभी कोई कोई दिखलाते हैं यहाँ पर राधा दामोदर ने भी उनको दिखलाते हैं, किंतु असल में वो चले गए हैं जयपुर, उनके विजय विजन यहाँ पर है। यह है उमराव गांव। तो उमराव गांव में ही राधिका जी की सरकार बनी थी और कोतवाल गांव कौन, ललिता बनी कोतवाल और
पकड़े गए,
हाँ और पकड़े गए मुरारी को पकड़ लिया और उनका विचार किया, उनका भी वकील आया, इनका भी, उनका वकील कौन, सिद्धांत मधुमंगल इत्यादि ये सब उनके वकील और श्रीमती राधिका इसके ललिता इत्यादि के, और ये मुकदमा दायर कौन किया है, विशाखा इत्यादि मिले ये सब, ये ललिता जी तो कोतवाल थे और गोपियों ने मिल करके वो केस दायर किया और ये कोतवाल बन करके पकड़ने के लिए संबंध लेकर के गई ललिता जी और उनको पकड़ ले आए और वहाँ पर पहट छिड़ी। पहट छिड़ने के बाद में फिर साक्षी के अभाव में उनको बरी कर दिया, बरी कर दिया किंतु साक्षी के अभाव में, मामला दायर सब ठीक था किंतु साक्षी नहीं मिली इसलिए उनको
साक्षी नहीं,
बस केवल दस्तखत करा दिया उनसे या अब ऐसा नहीं करेंगे, बस इतना ही कर हुआ। तो ये रहा उमर मांगा क्या उमराम। वहां पर जब राधिका जी को बैठ के सामने उनके बाएं तरफ में बैठा दिया तो इसमें लिखा है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, उसमें सब लीलाओं की परिपाटी का वर्णन है। उसमें लिखा है राधिकार प्रति मधु कहे बार बार, मधु मने मधुमंधु, वहां पर बैठाया, बैठा करके कहने लगा बार बार अवे कृष्ण लेह राज्य करो अधिकार। राधिका जी को कह रहे हैं राधिकार प्रति मधुमंगल कह रहे हैं, देखो अब मैंने कृष्ण को यहाँ पर ला करके तुम्हारे पास में बैठा दिया, अब ये तुम्हारा राज्य है, कौन कृष्ण, अब इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, अधिकार। कृष्ण दिवेन एक आलिंगन रत्न से तुम्हार भेजता फैदे करी यत्न लैदे करी यत्न, अब इनका तुम राज्य अंगीकार करो, अब ये राजा नहीं, राजा तो अब तुम हो गई और ये तुमको इसके बदले में जो देंगे इसको तुम कर के रूप में देंगे उसको तुम अंगीकार। और भी बहुत सी बातें उसमें लिखी हैं। इसके बाद में नरी से मरी एक स्थान है, नरी से मरी आजकल देवी जी का वहाँ पर पूजन होता है, राधिका जी का, देवी वहाँ की राधिका है किंतु पूजन करने लगे हैं सब देवी जी। नरी से मरी मैंने नौ को पहले ह को न कहते थे, बंगला में है ना,
ओपिनीति अभिस्तुति अस्तुति वक्ष जो है पांच प्रकार का है उसमें एक चेंज होता है।
तो इसमें हरि का सब हरि शब्द था तो हरि से नरी हो गया, सेमरी श्यामली हरि श्यामली बने इसलिए हरि से नरी हो गया और श्यामली से हो गया सेमरी। तो ये अब ये क्या हुआ, पहले का नाम हरि श्यामली, हरि श्यामली बने, राधा जी को मान हुआ, उनका मान किसी प्रकार से उतरता नहीं। तो श्याम जी श्यामा सखी बन करके वीणा दिया और वीणा वादन करते हुए उनके स्थान में इतना सुंदर राग रागनी से गाया गली में गुजरते हुए, राधा जी ने कहा उसे बुलाओ, तो एक तो पहले से वो जरा खिन्न है कृष्ण के विरह में, उन्होंने बुलाया, वो आ गई। सखियों का समाज बैठा था, उन्होंने कहा कि सखी तो बड़ा सुंदर गाती है, ये पहली बार तुमको इस ब्रज में देखा गया, तुम कहाँ रहती हो? तो अपना नाम बतलाया, अपना नाम श्यामा सखी बतलाया। तो वहां पर मैंने कहा अच्छा तुम एक गान करो, तो इतने सुंदर रूप में राग रागनी से उन्होंने गान किया, श्री राधा जी प्रसन्न होकर के अपने गले का हार उनको पहनाने, जो ही पहनाया त्यों ही कृष्ण का अंग सिहरने से वो समझ गया अरे ये दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न हो गए। जब माला देने लगी तो कृष्ण ने माला लिया नहीं, वो हार नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा, भाई इस हार के लिए मैं नहीं आया, मैं इतना राग रागने से तुमको प्रसन्न नहीं किया, मैंने तुमको प्रसन्न किया तुम्हारा मान रूपी रत्न चिंता मन है इसको लेने के लिए मैंने किया, तुम अपनी मान रूपी चिंता रत्न हमको प्रदान कर। बस वो मुस्कुरा दिया, बस उनका मान सब खत्म हो गया। इसलिए ये नरी सेमरी का नरी सेमरी में सेमरी जो है ये श्यामला सखी का स्थान है, यहीं पर उनका जन्म, उनका माता पिता इत्यादि सब है। ये श्यामली के नाम पर सेमरी हुआ, इसलिए श्यामला सखी जी कौन है, राधा जी की पूज्य पंक्ति की सखी है। श्रीमद् भागवत में इनके सब क्रियाकलापों का कृष्ण के प्रति अनुराग का ये सब वर्णन है। वहीं पर पासी में एक धन सिंह है नाम का गांव है छोटा सा। धन सिंह मैंने क्या, धनिष्ठा है ना, धनिष्ठा का धन सिंह हो गया। ब्रज में ऐसे जितने भी नाम है गांव के, इधर उधर बिगड़ टिगड़ करके किन्तु फिर अनुसंधान करने से उनका असल नाम का पता चल गया, इसलिए धनिष्ठा से हो गया, धन सिंह से हो गया ये धनिष्ठा। धनिष्ठा से उनका धनिष्ठा कौन है, जैसे मत आज्ञा पाए से धनिष्ठा श्री कृष्ण प्रसाद होंगे राधा है। धनिष्ठा जी कृष्ण पक्षी सखी है, वो सखी है और कृष्ण की यशोदा माँ की आज्ञा से सब सेवा करते हैं। कृष्ण प्रसाद पा लेने पर यशोदा जी धनिष्ठा के माध्यम से कृष्ण का प्रसाद राधा जी के पास में दे, और भी घर का जितना काम है ये धनिष्ठा जी करती हैं यशोदा जी के घर।
यशोदा भवन में नित्य रहती,
नित्य रहती हैं, कृष्ण को दर्शन कृष्ण की सेवा यशोदा जी माँ की, और भी सखियाँ जिसमें की ये प्रधान है। पासी में एक रणबाड़ी है,
रणगढ़ी
रणबाड़ी है, रणबाड़ी मैंने कमदार करण काम का रण, मैंने प्रेम का चुनाई वहां पर हुई थी, दोनों में इसके संबंध में युद्ध हुआ, इसलिए पहले से इसका नाम है रणबाड़ी। राधा और कृष्ण के विराज का स्थान है इसलिए उसका नाम है रणबाड़ी। किंतु पीछे से वहीं पर एक कोई कृष्णदास नाम के एक ब्रह्म रहते थे भक्त लोग, भक्त और यहाँ के राधा कुंड इत्यादि भक्तों के साथ में इनका बहुत ही मेल था, और ये सिद्ध माने जाते थे। कुछ देने के बाद राजा ने क्यों उनके हृदय में इच्छा हुई, मैं द्वारका जरा घूमा, उनकी इच्छा होने पर रात को स्वप्न हुआ, मानो श्रीमती राधिका जी कह रही हैं अरे तू वृंदावन को छोड़ करके ब्रज को छोड़ करके मत जाओ। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, स्वप्न ऐसे ही होता है, ऐसे ही स्वप्न हो गया होगा। इतने में वहीं का कोई ब्राह्मण गांव का आदमी आया, बोला जैसे द्वारका चलेंगे, मैं द्वारका जा रहा हूँ। अरे ना भाई हम नहीं जाएंगे, हमारा एक खराब स्वप्न हो गया, अब मैं नहीं जा। उसने कहा देखो तुमको खर्चा वर्चा नहीं देना पड़ेगा, रुपया पैसा तुम्हारी सेवा मैं करूंगा, तुम हमारे साथ में चलो। तो उनको फिर से उत्साह आ गया और स्वप्न को झूठा मान लिया और वो चल पड़े। वहां जाकर के द्वारका इत्यादि में रह करके उनको बड़ा अच्छा लगा, और वहां पर जाने पर सांप देते हैं, सांप रहता है क्या, वो चतुर्भुज का कोई नारायण का या किस चीज का छाप होता है, वो चक्र का छाप देते हैं। जलती हुई पीतल की या तांबे की कोई चीज होती है गर्म करके और छाप देते हैं। इसीलिए बहुत से लोग पहले डरते थे, हम लोग भी गए थे वहां पर गुरु जी के साथ में गए थे, 1952 में हम लोग गए तो वहाँ पर सब छाप देते थे, सबको छाप देंगे ही, हम लोग नहीं दिया, हम लोग बच गए जिसने सन्यासी और ब्रह्मचारी और बाकी सब लोगों को छाप दिया। उस समय में एक लोटा पानी का दाम 1 रुपया, बड़ा कुआं किंतु पानी थोड़ा सा, पानी उधर नहीं मिलता है, तो उस समय में छाप देते थे, इसको भी छाप दे दिया, तो इसने छाप ले लिया। कुछ दिनों के बाद में फिर मन नहीं लगा तो वहां से लौट करके आया उसी जगह में भजन के स्थल पर। अब जो लीला स्मरण इत्यादि था, जो मन लगना था, भजन में रुचि, नाम में रुचि, ये सब खत्म हो गया, किसी तरह से मन नहीं है। अपने मित्र के पास में गए, बाबा जी के पास में राधा कुंड, उन्होंने उनको देख करके पहले से मुख मोड़ लिया, उनसे बातचीत नहीं की। अजी अरे जी, इस पर तो राधिका जी प्रसन्न है, जब इसे आप बातचीत करेंगे तो ये प्रसन्न हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए। गुरु वैष्णव इष्ट देव हमारे किसी से बातचीत नहीं करते, हम भी बातचीत नहीं करेंगे, जो उनके प्रिय हैं उन्हीं से हमारा भी संबंध रहेगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने उनसे बातचीत नहीं किया, बातचीत नहीं, तब वो फिर लौट करके आए, बड़ा विरह में दुख हुआ, उसे आग निकली और रात में अपने कुटी में ही जल करके खत्म हो गया। दूसरे दिन सब लोगों को पता चला, अरे भाई वो बाबा जी खोल रही है, दरवाजा नहीं खोल रहा, दरवाजा खुला देखा वजह की ओर वहां पर भस्म पड़ा। तो उनका एक कोई गुरु भाई था, एक लकड़ी जो शीतल हो गई थी वो भस्म उसमें दिया तो वो भी जल उठी। इसके बाद में रणबारी प्रति वर्ष जिस दिन उन्होंने समाधि ली थी उसी दिन वहां पर उत्सव होता है, आज भी होता है। यह है निष्ठा का प्रश्न। राधा कृष्ण का भजन करेंगे और द्वारका देवी 2 अवतार खाएंगे, बद्रीनारायण में जाएंगे खाएंगे, निष्ठा नहीं। इसलिए एक निष्ठा के साथ में इनका भजन करने से तब जाकर के सिद्धि होगी। इसलिए वो रणबारी स्थान दोनों तरफ से वो प्रसिद्ध है। खैरो, खैरो मैंने क्या, कृष्ण का खैर है तो कुशल है तो खैरो, और क्या खायो रे, खैरो मैंने क्या, बता तू खदे को खदेड़ा कृष्ण ने, नहीं बस्तासुर वहीं से खदेड़ा, खैरो ग्राम से, खैरो माने खदेड़ा, खदेड़ा से वो खायो हो गया, खदेड़ा बन और फिर कृष्ण ने वहां से खदेड़ा, इसलिए वो खायो। अथवा खैर के पेड़ पर मरा था किसी असुर को, इसलिए वो खायो। अथवा और भी कारण हो सकते हैं खैरो बन, खैरो बन माने कृष्ण का वहीं पर पान और सुपारी और उसमें खैर देकर के उनको निवेदन किया जाता था।
इसलिए उसको तो कपित पेड़ में मारा था, कपित पेड़ से,
कपित तो कोई शायद खैर कहते हैं ना क्या, बाकी में बखरा है गांव, हम लोग छोड़ करके बाएं तरफ में आए, बखरा माने बकासुर का वध का स्थान, वही बकासुर को उन्होंने मारा। वहीं पर कामर है, कामर एक गांव, उसको भी छोड़ करके आए।
कामर में क्या हुआ,
कामर माने होता है वो, यहाँ पर कामर लेकर के चलते हैं लड़का आता थे, उसको दोनों तरफ में कुछ रख दिया
सामान लेकर चलते हैं,
और होता है कामर ही एक, और उसी को कहते हैं बांस। कामर सूरदास ने लिखा है इसके संबंध में, मैया मेरी कामर चोर लई, मैया मोरी कामर चोर लई, मैया से कह रहे हैं यशोदा मैया से रोते हुए, हमारी कामर तो किसी ने चुरा लिया, कौन चुराएगा, ये गोपियां ही चुरा दी है, ये कोई ना कोई हमारी कामर को चुरा लिया है। मैं पन जात चरामन गईया, मैं ब्रज में गैया चराने जाती हूँ, कमर को यहाँ पर रख दिया, सुनी देख लई, देखा जब कोई रक्षा करने वाला नहीं है तो वो कमर मेरी उठा करके चोरी लेकर के चली गई। एक है कान्हा तेरी कामर जमुना जात बढ़ी, अरे हमने देखा है वो कहाँ कान्हा, अरे जमुना में बहती हुई मैंने देखा, जा करके ले आओ।
किसने कहा?
गोपी ने ताली बजाते हुए कृष्ण से कहा, उस समय बच्चे हैं छोटे से। और दूसरी क्या कहती है, एक है कान्हा तेरी कामर सुरभि खाए गई, सुरभि चबा गई तुम्हारी कामर, और एक कहे नाचू मेरे आगे लय देहूं दूर नई, अरे तुम इसके लिए छोटी सी कमरिया के लिए क्यों रोता है, मैं तुम्हें नई कामर दे देता हूँ, थोड़ा सा नाचो तो फेंक फेंक करके सूरदास के सूरदास जसमती के आगे अश्वन धार बही, आंखों से आंसू की धार कामर के लिए बह रही है और मैया से उलाहना दे रहे हैं, ये हमको ऐसे तंग करती है। वो है कामर। कामर का एक और तात्पर्य है गुण, काम से कामर। गोपियों के काम को बढ़ाने वाले, कृष्ण को काम को प्रेम को बढ़ाने वाले नाम से इसका नाम हो गया कामर। बाकी में हम लोग कल गए तो पीछे पीछ की तरफ में हमने छोड़ दिया किसको, पायग्राम को। पायग्राम पड़ता है जब कोशी से हम आते हैं यहाँ शेरगढ़ तो बीच में पड़ता है। पाए गांव माने क्या होता है, पाए माने दूध, पाए माने पानी भी होता है क्योंकि दूध उठता है, लोगों को बच्चों को भूख लगती है तो कृष्ण बैठ जाते हैं गाय का दूध चुटवाने लगता है, अपने भी खाते हैं बच्चों को भी धार उठना सबको खिलाते हैं, इसलिए उसका नाम है पायग्राम। रामघाट तो हम लोग गए, बिहार बंद हम लोग गए, फांदी बट हम लोग गए, कजरोटा में हम लोग गए थे, कसरत पाला गोपी घाट तपोवन में हम लोग गए, नंद घाट में हम लोग नहीं गए, पादी में ये नंद घाट पड़ता है, भद्रवन के पास में समीप में जमुना के किनारे उस पार, इस पार में, और उस पार में भद्रवन है, वत्सवन इधर है और भांडीर भट्ट उधर है, यमाट बन उधर है और इस तरफ में वत्सवन है। तो वैसे ही नंद घाट कहाँ है, भय गांव और नंद घाट एक जगह है, हम लोग पिछली एक दो बार पहले गए थे, बस में भी गए थे एक बार, हम लोग उधर से भी गए थे दो बार, हम तीन बार गए। तो ये नंद घाट है, भय गांव कौन है, नंद वहां को भय लग गया, उनको वरुण उठा करके ले गए द्वादशी के दिन में, खूब सवेरे को जमुना में स्नान कर रहे और कुबेर के दूध उनको पकड़ कर दिए, पीछे से कृष्ण को पता चला तो कृष्ण वहां पर गए, उनको देख करके कुबेर उनकी बहुत सी सेवाएं की, रत्न हार इत्यादि सब दिया, नंद बाबा को लेकर के उनको दे दिया। नंद बाबा ने देखा जिसे इसका इतना विशाल वैभव और कृष्ण के चरणों में सब कुछ रख दिया और सब स्तुति कर रहा है, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। जब वहां से लौट करके आए तो ब्रजवासियों से कहा, तो ब्रजवासियों ने कहा कि हमको भी उस लोक को दिखलाओ, तो उन्होंने कहा जा अच्छा रहा, तो पीछे से ब्रह्म घाट में उनको दिखलाया। तो उसको कहते हैं भय गांव, भय माने भय से गांव, और नंद घाट उसी को कहते हैं जहां पर स्नान करते थे, वहां पर कुछ दिन रहे। पाटी में जीव गोस्वामी का स्थान है, जब रूप गोस्वामी ने उनको शासन किया और कहा जब तुम्हारा भी क्रोध नहीं गया भय गांव है, तो वहां पर ये चले गए और वहीं पर भय गांव के पास ही में जहां क्रोकोडाइल रहते हैं मगर वहीं पर किनारे में वो गहवर बना लेते हैं, गुफा बना लेते हैं पानी के भीतर और उसी में रहते हैं, कभी ऊपर में आते हैं और कभी भीतर में रहते हैं, तो वहां पर मगर सब रहते थे, उनकी माद में रहने लगे, माद बने गड्ढे में रहने लगे और कुछ नहीं खाते, दिन रात रोते, उसमें शुक्र के कांटे हो गए, शरीर अस्वस्थ हो गया, सनातन गोस्वामी गए, गांव वालों ने उनकी बच्चे की बड़ी तारीफ की, आप क्या भजन करते हैं, आपसे भी भजन करता है, दिन रात रोता है और कुछ नहीं खाता, और उस सनातन नाम लेकर के रोते हैं। उसी समय में सनातन गोस्वामी देखने गए, देख करके और उसने साथ वृंदावन में लाए और वो अपनी कुटी में रख करके और खुद गए। रूप गोस्वामी से कहा, भाई जीवों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है साधुओं का, और तो दया करनी चाहिए, तो तुम जीव गोस्वामी को छोड़ करके और दया नहीं करते हो। फिर वो बड़े दुखी हो गए, तो जीव गोस्वामी को लेकर के उनकी गोदी में जब बैठा दिया तो ये भी रोने लगे, वो भी रोने लगे। फिर रूप गोस्वामी ने उनकी चिकित्सा कराई, फिर सब ठीक ठाक हो गया। फिर अपने ग्रंथों का सब भार उन पर दे दिया, जितना करेक्शन करना और ये सब ग्रंथों का संग्रह उन्होंने किया। जी गोस्वामी ने ही हमारे रूप गोस्वामी की जितनी पुस्तकें हैं उनको लिखवाया हाथ से और उनका प्रकाश कराया। सिरघाट हम लोग गए, सिरघाट को हम पार करके बसई में गए, बसई को बसई बीच में है और इधर में जेई और सेई है, तो जेई सेई में हम लोग गए, वहां का बदलाया हमने, और बसई जो कहते हैं बत्सबन में हम लोग गए। उसको जब हम पार करके जब चले तो पड़ा परखम, परखम परखम मैंने क्या, परीक्षा के परखम। जब कृष्ण गए चरा रहे थे और अघाटू का वध हुई पासी में है सपौली गांव, जिसको परसौली कहते हैं आजकल, परसौली भी कहते हैं, परसौली माने परसौली और परसौली माने फिर भी संपौल, थोड़ा सा इधर उधर। परसौली इसलिए कहते हैं कि कृष्ण उसके मुख में पस गए, पस गए माने घुस गए, प्रवेश करने का नाम है प्रवेश से प्रवेश, तो ये परसौली हो गया। और संपौली इसलिए ये अगासुर वहां था, अगासुर का मत क्या इसलिए संपौली, और उसके मुख में घुस गया इसलिए परसौली। उसी के पास में ये परखम है, ब्रह्मा जी ने देखा वहीं पर परसौली में, अरे परखम में वहीं से देखा, सपौली पास ही एक मील के अंदर में है, इसे अरे इसके मुख में ये प्रवेश कर गए और उसे तेज निकला, उसके सिर को निकाल करके तोड़ करके सिर को फोड़ करके और कृष्ण निकल आए, और उसमें से उसका तेज निकला, कृष्ण के पैर में प्रवेश कर गया, उसको मुक्ति मिल गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तब उन्होंने वहीं से परखम किया, अरे ये कौन है, वो नंद का लाला है नहीं, ये परब्रह्म है, यदि परब्रह्म है तो इसकी कुछ लीला देखूं, इसलिए इसको बच्चों को यहाँ से हटाऊं। इसलिए परखम मैंने विचार करके परीक्षा की, जो वही परब्रह्म है या क्या है, इसलिए इसका नाम हो गया परखम। पांची में चौमुहा है, चौमा जब यहाँ पर परखम करके सब ठीक ठाक कर लिया और बछड़े सब निकल आए और जब अपनी ग्लानी हुई तो स्तुति किया ये चौमा में, इसलिए इनका नाम है चौमा। बच्चे करा रहे ये क्या, ये चौमा चौमा चौमा, वो उठ रहे गिर रहे थे और उनकी प्रार्थना कर रहे थे। कृष्ण एक बच्चे के हाथ पर बायां हाथ देकर के दाहिने हाथ से लीलात्मक घुमा रहे, मन उनकी प्रार्थना ही सुन नहीं रहे। तो वह है परखम, पासी में चमोहा, पासी में एक मिनट के अंदर में परसौली या संपौली या सर पर सली, पासी में है सकरायो, सकरोया, सकरोया, सक माने सक्र जहां रोया, सकरोया, सकरोया, सक्र माने इंद्र,
एखन नाम सकराया,
अब सकरोया, रोया, सकरोया, सब जहां पर रोया वहां पर गोवर्धन ने जब उनकी, जब उन्होंने भगवान की ये देखा, भगवान ने उन पर कृपा विशेष नहीं की, उनको विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए छत्तीकरा के निकट आ गए जहां पर कृष्ण वास करते थे, और इसी ग्राम में रह करके कृष्ण की आराधना करते थे, इसलिए वहां पर रह करके रोते थे, आराधना करते थे, रोते रोते मंत्र जप करते थे, इसलिए सब रोया उनका नाम हो गया। जैन, जैत मैंने जब ब्रह्मा जी ने को जब उनकी प्रार्थना उठना की तो वहां पर देवता लोग भी आ गए और जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो तुम्हारी, इसलिए जैसे जय, जैसी हो गया और बाकी में फिर गरुड़ गोविंद हम आ गए। अब हम लोग का कुछ स्थान रह गया है, बहुत स्थान रह गया है, पूरा तो हम लोग गए नहीं है, जो बीच बीच में बतलाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से वृंदावन जब जाएंगे तो रास्ते में आएगा भाकरौल आएगा, भाकरौल आएगा, अपूर्व घाट आएगा और फिर हम लोग अभी जाएंगे बेलबन। अभी गोवर्धन जाएंगे तो बीच में पड़ सकता है बहुत स्थान, शांतनु कुंड पड़ेगा, माधुरी कुंड पड़ेगा, पासी में पड़ेगा अड़िंग, राजा जी का मान अड़िंग है, दिखता नहीं है इसलिए अड़िंग है, और पासी में ये चंद्र सरोवर
पैठ
और पैठा, ये सब स्थान है, ये सब दर्शनीय स्थान है, कृष्ण लीला के स्थान है। तो ये सब का भी वर्णन हम लोग करेंगे पीछे, आज रात से आज यहीं तक रहे, फिर दूसरे दिन सब का वर्णन करें। आप लोग अभी बताया 16 तारीख को हम लोग चलेंगे गोवर्धन, हमारे समय से सबको चलना चाहिए, एक दिन का मामला है, सब परिक्रमा करके भी नहीं, जिसकी परिक्रमा कुछ नहीं हुई और जिला की परिक्रमा कर दी तो सबकी परिक्रमा हो जाएगी, क्यों 84 को की परिक्रमा गोवर्धन की परिक्रमा से ही हो जाएगी। उस दिन सब लोग चलेंगे, हमको नाम लिखवा देंगे इन लोगों के पास में, जो कौन कौन चलेंगे, जिनका नाम लिखा है वो तो है ही है, बाकी जिनका नाम नहीं लिखा है वो सबको बतला देंगे, जरूरत होगी तो एक और बस मैं कर दूंगा हमारे साथ में, बस जाएगी और साथ ही में वो शाम को लौट करके आएगी।
कृपामयी स्वंतरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणाय श्रीगौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय वदामि राधां मधुरस्मिताख्यं वदामि राधां कर्णाभरत्नं कुसुमवन्नास्ति गते।
बृहद भगवतामृत का अंतिम पद है, हम लोग पाठ कर हम लोग अब तक मंडल परिक्रमा की और विभिन्न स्थानों में वहाँ की लीला कथाओं का वर्णन किया, इसलिए किया एक होता है साधन भजन अपने उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए मैंने बोलती जैसे सामने दीजा मैं सब दीजिए ना करते तुम्हारा ठीक पीछे न करो दीवार सुन को ऊंचाई नहीं जमा पीछे को जरा पाका उत्साह घूमू और पीछे बढ़ो। हम लोगों ने सुना है कि भक्ति भक्ति दो प्रकार से होती है।